हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनस्वी ने खुद ही उसे वो चाबी दे रखी थी क्योंकि वो उस पर भरोसा करती थी और उसने कभी भी वो चाबी वापस नहीं मांगी थी। अनय वो चाबी अपने साथ लेकर आ गया था। उसे पता था आज कहीं ना कहीं वो चाबी काम आने वाली है। इतना सोचते हुए वो उस होटल के अंदर गया और कॉरिडोर के सबसे लास्ट में बने हुए उस आखिरी बड़े रूम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया, जहां पर रूबी ने बताया था कि शिविका हो सकती है और उसे भी वहां पर शिविका के होने की पूरी उम्मीद थी। इसके अलावा सिस्टम रूम रास्ते में पड़ा था। वहां पर आते हुए अनय ने देखा कि सिस्टम रूम पूरा बंद था और वहां पर कोई भी नहीं था। इसके अलावा ज्यादातर स्टाफ भी अपनी जगह से गायब था। ये सब अनय को काफी अजीब लगा। उसे पता नहीं क्यों ये सारी चीजें मिलकर किसी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन फिर भी मन ही मन वो यही मान रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। ये सोचते हुए वो उस रूम की तरफ बढ़ा। वो रूम पूरा साउंड प्रूफ था और उसकी खिड़की, दरवाज़ा कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे थमरे के अंदर देखा या सुना जा सके। इसलिए अनय के पास अपनी मास्टर की यूज़ करके अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये सोचकर दरवाजे के सामने खड़े हुए उसने अपने कोट की पॉकेट से वो चाबी निकाली और उसे दरवाजे में बने हुए सिस्टम लॉक के सामने दिखाया। एक बीप की आवाज़ आई। उस बीप की आवाज़ होते ही कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। इससे अनय को समझ आ गया कि उसकी ये चाबी सारे कमरों के लिए काम करती है। दरवाज़ा जो हल्का सा खुला तो एकदम से ही उसे कुछ लोगों के दरवाजे की तरफ आने की आहट सुनाई दी, लेकिन उससे पहले ही अनय वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वो वहां पर अंदर आया और तुरंत ही उसने अपने आप को चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ पाया। वे सब नॉर्मल लोग नहीं थे, स्पेशल ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड थे। वे सब अनय को घेर कर खड़े थे और उनमें से दो ने तो उसके ऊपर बंदूक भी तानी हुई थी। उन लोगों के पीछे अनय को वहां पर दो से तीन लोग और बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी पीठ उसकी तरफ थी तो वो उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने एकदम कड़कती हुई आवाज में पूछा, यहां क्या कर रहे हो? यहां पर किसी का भी आना मना है, अभी मीटिंग चल रही है, और तुम? उन सारे बॉडीगार्ड्स ने अनय को कभी ना कभी मनस्वी के साथ आते जाते, बात करते या फिर उसे राठौर इंडस्ट्री के किसी ना किसी होटल में तो देखा ही है, लेकिन वे सब मनस्वी के साथ उसके रिलेशन नहीं जानते थे। उन लोगों को ये लगता था कि अनय भी उनकी और बाकी वर्कर्स की तरह वहां पर होटल में काम करता है। उस बॉडीगार्ड के इस तरह से पूछने पर भी अनय बिल्कुल नहीं डरा। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल किया, हाँ मुझे पता है, लेकिन जिसने मना किया है मैं उससे ही मिलने आया हूँ, वो है ना यहाँ पर, तुम्हारी मैडम? अनय ने जिस तरह से ये सवाल किया उससे बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कुछ भी जवाब दे पाता उससे पहले ही उसकी आवाज़ पहचानते हुए पीछे से दो लोग एक साथ बोले, अनय। उन दोनों की आवाज़ सुनकर अब चौंकने की बारी अनय की थी, क्योंकि उसे यहाँ पर सिर्फ मनस्वी के होने की उम्मीद थी, लेकिन वो दूसरी आवाज़ भी काफ़ी जानी पहचानी थी और वो उसके दोस्त आदित्य की थी, जिसे वो काफ़ी अच्छी तरह से पहचानता था। इसलिए वो एकदम से बोला, आदि तुम भी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मनस्वी के साथ और ये सब? उन दोनों के मुंह से एक साथ अपना नाम सुनते ही अनय के अंदर और भी ज्यादा हिम्मत आ गई और वो अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को धक्का देकर साइड करते हुए वहां से आगे बढ़ा। आमने सामने बड़े से सिंगल काउच वाले सोफे पर वे दोनों ही कुछ देर पहले बैठे हुए थे, लेकिन अभी दरवाजे से अनय के अंदर आते ही वे दोनों अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए थे। इस वक्त अनय बारी बारी अपना चेहरा घुमाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनके बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर अब हैरानी से ज्यादा सवाल नजर आ रहे थे। उन दोनों के अलावा आदित्य का पर्सनल असिस्टेंट नदीम भी वहां पर उसके साथ था, लेकिन वो आदित्य के काउच के पीछे चुपचाप खड़ा था। अनय ने अपने मन में चल रहा सवाल पहले ही पूछ लिया था, लेकिन अब तक दोनों में से किसी की भी तरफ से उसे उस सवाल का जवाब नहीं मिला था। तो अनय बोला, देखो तुम दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो सकता, इसलिए ये इस तरह का कोई चोरी पकड़ी गई हो वैसे एक्सप्रेशन देना बंद करो और सीधे सीधे बताओ आखिर कर क्या रहे हो तुम दोनों। और आदित्य तुम्हें तो मनस्वी बहुत ही ज्यादा बुरी और गलत लगती है, तो फिर क्या कौन सी मीटिंग डिस्कस कर रहे हो यहाँ पर, बता दो मुझे जो कुछ भी चल रहा है। इस बार अनय ने सीधे सीधे आदित्य की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया। आदित्य ने कुछ बोलना चाहा और थोड़ा सा आगे आकर अनय का एक हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ सही कह रहा है तू, और वैसे भी मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मनस्वी अपनी जगह से आगे आकर उन दोनों के बीच खड़ी हो गई। उसका चेहरा अनय की तरफ था और वो आदित्य की अधूरी बात पूरी करती हुई बोली, उसे मैंने यहाँ पर बुलाया है, वो यहाँ आना नहीं चाहता था अनय, लिसन टू मी। इतना बोलते हुए मनस्वी ने भी दूसरी तरफ से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। उन दोनों की ऐसी आधी अधूरी बातें सुनकर अनय को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। गुस्से में वो दोनों का हाथ दूर झटकते हुए बोला, किसी ने भी बुलाया हो, कोई कैसे भी आया हो, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, तुम दोनों में से कोई भी क्या कर रहे हो यहाँ पर? जरूर कोई सीरियस मैटर है, और मुझे तो बताना जरूरी नहीं समझाना तुम दोनों में से किसी ने भी। हाँ ठीक है, मायने नहीं रखता हूँ मैं तुम दोनों में से किसी की भी लाइफ में, लेकिन अब बेशरम इंसान की तरह खुद ही बीच में आकर पूछ रहा हूँ तो कम से कम अब तो जवाब दे दो। अनय का ऐसे सिचुएशन में गुस्सा होना एकदम जायज़ था, इसलिए आदित्य बहुत ही आराम से उसे समझाते हुए बोला, मैं बताता हूँ अनय, और वैसे भी मैं तुझसे ये बात नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन इसने ही मुझे मना किया था, इसीलिए ही मुझे यहाँ अकेले आना पड़ा। और ये मेरे साथ एक डील करना चाहती है, जबकि मैं ऐसी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अपने मामले खुद से ही सॉल्व करने में विश्वास रखता हूँ। उन दोनों की बातों से इरिटेट होते हुए अनय बोला, कैसी डील? एक दूसरे का होटल खरीद रहे हो क्या? और मनस्वी, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो इमोशनल होकर। पता है रिश्ते निभाना तुम्हें कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद को हमेशा दूसरों से ऊपर मानती हो और तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चलता। अनय को पिछले कुछ दिनों में मनस्वी से शायद कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई थी, इस वजह से वो ज्यादा नाराज भी उससे ही था और सारा गुस्सा भी उसका मनस्वी पर ही निकल रहा था। अनय को इस तरह नाराज होते देख मनस्वी ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, स्टॉप इट अनय, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ट्रस्ट ना होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने देती? तुम क्यों हमारे रिश्ते को इस बात के बीच में ला रहे हो? वो इन सबसे अलग है। अनय कड़वाहट से बोला, बड़ा एहसान तुम्हारा मिस मनस्वी राठौर, जो तुमने अब तक मुझे यहाँ से निकलवाकर बाहर नहीं फेंकवाया। और भी कुछ बचा है? मनस्वी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अनय प्लीज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो जो मामला है मैंने तुमसे इस बारे में बात भी की थी, और आदित्य गलत कर रहा है विराज को किडनैप करके उसे टॉर्चर करके, और इतने तक तो चलो ठीक था। मैं मानती हूँ विराज ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आदित्य बीच में बोल पड़ा। लेकिन है तो वो तुम्हारा कजिन भाई, तुम तो उसका ही साथ दोगी ना, और कैसे भी करके बस उसे बचाना चाहती हो।
आदित्य की ये बात सुनकर अनय ने भी गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखा। आदित्य की जली कटी बातों से मनस्वी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था जितना कि अनय की इस तीखी नज़र से, इसलिए वो आदित्य के बजाय अनय को सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मैं उसे बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहती। और आदित्य प्लीज़ तुम ये सब कुछ भी मत बोलो, तुम्हें पता है ना हम अभी यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे थे, तो सच बोलो अनय के सामने भी। आदित्य भी एकदम मजबूती से बोला, हाँ तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, तुमने इसीलिए ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था निगोशिएट करने के लिए कि मैं विराज को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दूंगा और बदले में उसकी फैमिली भी मुझ पर कोई केस नहीं करेगी और वो यहाँ से बाहर आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा, तो ये एक तरह से उसे बचाना ही तो हुआ। अनय ने आदित्य की तरफ भी देखा तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो दोबारा मनस्वी की तरफ देखने लगा। इस बार मनस्वी थोड़ी झुंझलाहट से बोली, अच्छा तो तुम क्या करना चाहते हो, जान से मारना चाहते हो क्या उसे? इतने दिन किडनैप करके टॉर्चर करके अभी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई और क्या करना चाहते हो उसके साथ? खूनी मर्डरर बनना चाहते हो? और तुम्हें क्या लगता है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो सुनैना को भूल जाएगा, दोबारा उसके साथ कभी कुछ वैसा नहीं करेगा? क्या लगता है तुम्हें, बताओ? आदित्य भी उसी तरह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अच्छा और तुम्हारा भाई जो कुछ भी करे, वो लोगों की जाने लेता थिरे, किसी की बीवी को किडनैप करे, वो सब कुछ जस्टिफाइड है तुम्हारे लिए? उन दोनों की बात सुनकर अनय को इतना तो समझ में आ गया था कि वहाँ पर विराज के बारे में ही बात चल रही थी, लेकिन पूरा मामला क्या है ये उसे अभी भी समझ नहीं आया था, इसीलिए उन दोनों की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए अनय बोला, किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? और अगर आदित्य ने किडनैप किया भी मनस्वी, तो तुम इस बीच में क्यों आ रही हो? उसके साथ जो भी होगा वो निपट लेगा, वैसे भी विराज ने इतनी बड़ी गलती की है, उसे कुछ तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुम इस तरह उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करोगी तो तुम भी उसके जितनी ही जिम्मेदार होगी इन सब के लिए। अनय को जवाब देते हुए मनस्वी ने आदित्य की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया, मैं उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रही, और यहाँ पर अब बात सिर्फ विराज की, तो अनय तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त ने और क्या किया है? अनय फिलहाल आदित्य के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने मनस्वी को बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे नहीं सुनना, और कम से कम तुम्हारे मुँह से तो बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी है, जैसा भी है, आदित्य खुद भी मुझे बता देगा, और मुझे भी तुमसे ज्यादा उस पर भरोसा है, हमेशा से और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता मनस्वी, ये बात तुमने खुद ही आज साबित कर दी।